संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन बितरे हमारे ध्यान। एक प्रश्न और रखा है यहाँ, यद्यपि प्रश्न आने से जो विषय चला रहे हैं उसमें बाधा खड़ी होती है, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं कि जिनका स्पष्टीकरण भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि यहाँ उनका स्पष्टीकरण नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा। ये भी बहुत मार्मिक बात है। देखो क्या है, ज्ञान की स्वपर प्रकाशक शक्ति से ये प्रतिबिंब होते हैं। ज्ञान में गे का आकार उत्पन्न होता है, तब गे वहाँ उपस्थित होते हैं। यह किस तरह है कृपया समझाइए। शास्त्रों में ज्ञानाकार और गेयाकार ये दो शब्द आते हैं। वस्तु स्थिति ये है कि ये दो चीजें नहीं है, एक ही चीज है। तो एक ही चीज को दो तरफ से देखने पर दो नाम पड़ गए। जैसे कि भांजे की तरफ से देखने पर उसका नाम मामा पड़ जाता है, और पुत्र की तरफ से देखने पर उसका नाम पिता पड़ जाता है, लेकिन वो व्यक्ति एक है। होता क्या है कि चार प्रकार के संबंध, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये तो डंके की चोट पर इनका निषेध किया, पर इसमें कोई विवाद है ही नहीं कि इनका पर के आत्मा का पर के साथ न एकत्व है, न ममत्व है, न कर्तृत्व है, न भोक्तृत्व है। अब ये जानने के मामले में थोड़ा मामला गड़बड़ाता है, ऐसा लगता है कि ये आत्मा पर को जानता है। अब न पर में एकत्व है, न पर का स्वामी है, न पर का कर्ता है, न पर का भोक्ता है, और पर को जानता है। अब जानने से क्या दिक्कत होती है कि जिसको ये जानता है बस उसे अपना मान लेता है। अब अपराध यहां से शुरू होता है। वो जानने तक उस सीमा तक अपराध नहीं है, समझे? कोई भी पदार्थ को हम देखते हैं, जानते हैं, तो तब तक कोई अपराध नहीं है, और फिर जब उससे राग द्वेष करते हैं, उसे अपना मानते हैं, तो वहां अपराध शुरू हो जाता है। तो हमारी पुरानी आदत ऐसी है कि एक कदम पहले से इंतजाम करना। बनिए व्यापारी है ना, वो कहते हैं कि भाई ये माल हमको यदि 1 लाख में बेचना है तो 1.5 लाख बताओ, क्यों? और फिर 1 लाख तक आ जाएंगे। और वो भी समझता है कि हमें 1 लाख में खरीदना है तो 50,000 बता, क्यों? हम धीमा धमकी होती है और जो होता है वो हो जाता है। तो ऐसे हमको कहते हैं कि यदि पर में एकत्व ममत्व नहीं करना है, तो यदि हम पर को जाने ही नहीं तो सारा झगड़ा ही खत्म। इसलिए हम एक कदम पहले इंतजाम कर देंगे, हमें जानने ही नहीं, पर को जानने में हमने अपराध मान लिया। कोई में था तो उसमें एकत्व ममत्व करते तो भोक्तृत्व में, और ये कहते जानते ही नहीं तो कैसे होता। हमें लड़की दिखाई नहीं देती तो हमारे मन में खराबी कैसे आती। ऐसा सोच के सूरदास ने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली थी। सूरदास रोजाना 8 पहरी भक्ति करते थे, अपने श्री कृष्ण के मंदिर में जाते थे, और हर पहर, दिन में 4 पहर होते ना और रात में 4 पहर, तो हर पहर में भक्ति करते थे, और हर पहर में रोजाना नया छंद बना के ले जाते थे भक्ति का, पुराना नहीं पढ़ते थे। ऐसे कहते उनके 8 छंद बन गए सारे जीवन में, करीब 5-6 हजार तो मैंने पढ़े हैं उनमें, क्योंकि मैंने एमए में सूरदास स्पेशल पोएट के रूप में लिया था, और 100 नंबर का पेपर उसी का होता है, और उसमें 5-7 हजार छंद उसके थे सूरदास के। तो जब वो मंदिर में जाते थे और भगवान की भक्ति करते थे हर पे, तो वहां पर तो सब महिलाएं भी आती थी, तो किसी महिला को देखकर उनके चित्त में थोड़ी सी विकृति आ गई। तो उन्होंने कहा इन आंखों का अपराध है, ये न देखती और न मेरे मन में विकृति आती। तो उन्होंने दो सूजे लेकर अपने आंख में डाल के आंखें फोड़ा। ये कहानी है, उनने आंखों का अपराध समझा, सजा आंखों को दे दी। लेकिन उसके बाद के जो छंद लिखे गए वो इतने गहरे श्रृंगार रस से भरे हैं कि उन छंदों को मैं यहां आपको एक पंक्ति भी दोहरा नहीं सकता। आज का सिनेमा भी उसके आगे फीका पड़ जाएगा। गीत गोविंद के छंद हैं, सूरदास के छंद हैं, और भी कई होंगे जो साहित्य में है ना। और मैंने बोला था भरतेश वैभव प्रबंधन ने अपने जैनों में आप पढ़ नहीं सकते। तो मैंने कहा यदि आंखों की वजह से होता तो बाद में ऐसा कैसे होगा? होता क्या है मालूम आपको कि जब किसी चीज को अपन देखते हैं तो वो चीज हमारी आंखों में उसका चित्र आ जाता है। तो जब पुलिस आती है किसी की हत्या हो जाती है तो सबसे पहले उसकी आंखें बंद करती है मरे हुए आदमी की। क्यों? जो आदमी आएगा मरने के बाद भी उसका प्रतिबिंब उसमें आएगा और वो चाहते हैं किसी हत्यारे ने इसका गला खोटा है और इसकी आंखें खुली होंगी तो उसका फोटो उसमें आ गया होगा। तो उन आंखों में से वो फोटो निकालकर हत्यारे को पकड़ लेते हैं। समझे? सूरदास ने जब आंखें फोड़ी उस वक्त जिस जो चित्र उनने देखा था जिसकी वजह से उनने आंखें फोड़ी वही उनके हृदय में अंकित हो गया और सारी जिंदगी फिर वही दिखता रहा कि दूसरा तो कुछ दिखा नहीं। समझ में आया कि नहीं है? उपाय आंखें फोड़ना नहीं है। पर पदार्थों से राग द्वेष मोह न हो इसका उपाय पर पदार्थों को जानना बंद करना नहीं है। और जानना बंद आप कर ही नहीं सकते क्योंकि वो तो आत्मा का स्वभाव है। एक परीक्षा मुख सूत्र है माणिक नंदी आचार्य का। जब हमारे यहां महाविद्यालय में विद्यार्थी भर्ती होता है तो पहले ही साल में उसे पढ़ाया जाता है। और ये जतीश भाई के ग्रुप को, अटल जी के ग्रुप को और पांच सात ग्रुप जो शुरू शुरू के आए थे उनको वो परीक्षा मुख मैंने ही पढ़ाया है। तो उस पर दूसरा कोई अध्यापक था नहीं, एक अध्यापक थे वो परमेश्वर गुरु जी जो लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते थे, बाकी न्याय सिद्धांत सब नहीं पढ़ाता था। अब बाद में तो मेरे विद्यार्थी पढ़ाने लग गए। क्यों? तो इनका तो मैं गुरु था, उनका गुरु नाम गुरु हो गया। तो उसमें एक सूत्र आता है बहुत मार्मिक, तो समझने जैसा है इस संदर्भ में कि बौद्धों के यहां ऐसा मानते हैं कि ये ज्ञान ये से उत्पन्न होता है। क्या? ज्ञान गे के आकार होता है, गे आकार होता है और ज्ञान गे को जानता है। अब सुनो जैनाचारी क्या कहते हैं, आपके पैरों को जिसे जमीन खिसक जाए, कि ज्ञान गे से उत्पन्न नहीं होता, ज्ञान गे के आकार नहीं होता और ज्ञान गे को नहीं जानता। सुनी कभी? ये जैन मान्यता है जो पहले साल में जुलाई में ही पढ़ा देते हैं। जो विद्यार्थी भर्ती होते पहले साल में ही पढ़ाते हैं विद्यार्थी को। अब आपने आज आपको आश्चर्य होगा क्या कह रहे, ज्ञान गेय को नहीं जानता है। तो क्या है? तो उन्होंने ये सिद्ध किया कि ज्ञान गेय को जानता होता, ज्ञान गेय से उत्पन्न होता होता, गुरुदेव ने बहुत घटाई करी इसकी कि ज्ञान गेय से उत्पन्न नहीं होता। तो उसमें एक उदाहरण दिया है कि यदि ज्ञान गेय से उत्पन्न होता होता तो जो चीज हमारे सामने है उसका ज्ञान होना चाहिए। बौद्ध ऐसे ही मानते हैं क्योंकि एक प्रश्न खड़ा हुआ कि हमारे ज्ञान का जो थ्रेसम है ना उससे हमें किसी न किसी चीज को जानना है। तो ये जानना है तो किसको जाने और किसको नहीं जाने इस समस्या का समाधान क्या है? प्रश्न क्या है? देखो अपने आपने बच्चे को 100 रुपया दिए और साथ में ये कह दिया ये फना फना चीज लेके आ, तो उससे बच्चे की रुचि का कुछ पता नहीं चलेगा। आपने बस बता दिया ये लेके आ, बेचारा गया 100 का नोट लेके, वो लेके आ गया। लेकिन उसने 100 का नोट दिया और कहा कि जो तेरे को खरीदना हो अपने मन से तुम वो ले आ। तो अब उसकी रुचि का पता चलेगा। वो सिनेमा का टिकट लाता है कि समय सार खरीद के लाता है कि वो आजकल क्या चल गई खाते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, तो ट्रॉफी वो भी आने लगी पंद्रह पचास पचास 100-100 रुपए की। हम तो सोच भी नहीं सकते हैं, है? वो जो उसके मन में लाएगा उसे समझ लो कि उसकी सर्वाधिक रुचि किसमें है, है ना। तो वो ये बौद्ध तो ये कहते हैं कि जो पदार्थ सामने आ गया वो उसे हमने जान लिया, यानी हम गे के अधीन हो गए, हम किसको जाने से हमारे हाथ में नहीं है। ये आपको पसंद है कि हम जो हमारे सामने आ गया उसे हमने जान लिया और जो हमारे सामने नहीं आया उसे हमने नहीं जाना। ये नहीं कहते, ये बात सही नहीं है। यदि ऐसा होता तो आप सब मेरे सामने बैठे हुए हैं क्यों, और मैं पूछूंगा कल आपसे क्यों साहब आप प्रवचन में नहीं आए, हमें तो एक ही दिन नहीं दिखे कि साहब आपके ही सामने तो बैठे थे और आपको नहीं दिखता है तो हम क्या करें, चश्मा बदलवा दो। होता कि नहीं होता है, एक घंटा हमारे सामने बैठे रहते हैं और हमें पता नहीं पड़ता कि आप बैठे हैं, और हमारा लड़का बंबई में बैठा है इस वक्त वो हमारे ज्ञान का जय बन जाता, अब वो तो सामने नहीं। तो जो सामने हो वो ज्ञान का गेय बनेगा, ये कहां का नियम है। देखते ना, भगवान की पूजन आप करते हैं, सामने तो भगवान की मूर्ति है सब है, और उसी बीच में आप कहां कहां घूमने आते हैं, क्यों घर में रसोई घर में घूम के आते हैं कि नहीं आते हैं। और हमारा निमंत्रण करने उस दिन दस मिनट गया तुम्हारा काम, इसलिए हम किसी का निमंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहते, एक दिन का तुम्हें तत्व ज्ञान का नुकसान कर दें तो तुम नहीं सुन पाए, क्यों क्या फायदा। और यदि कदाचित वो बैठी भी रहे हैं सौभाग मल जी तो भी उन्हें रसोई दिखेगी, यहाँ हम बैठे हम नहीं दिखेगी। तो इसका मतलब है कि सामने जो ज्ञान ये हो वो देखे, ये नियम नहीं है जैन दर्शन कहता है। तो फिर कौन सा नियम है कि जिसके आधार पर हम निर्णय करें कि हम जिसको ज्ञान हमें जो सौ सौ ज्ञान मिला है ना, तो पिताजी ने 100 का नोट दिया समझ लो, अब 600 ज्ञान का हम क्या उपयोग करें, क्यों ये बात हमारे हाथ में होना चाहिए कि पिताजी बता दें कि तुम चॉकलेट लाके खा ले, जो हमारे हाथ में होना चाहिए ना। तो ये के हाथ में हो गया बौद्धों के यहां से, हमारे जैनियों ने इनकार कर दिया। तो अब कहते जैनी फिर तुम्हारी तुम्हारे अधीन हो गया ना, तुम जिसको जानो चाहो, तो चाहो तो चाह तो विकार है, तो तुम विकार के अधीन हो गए, वो तो गे के अधीन हुआ था, समझ में आएगा। देखो आएगी समझ में, लेकिन समझे बिना असली जैन धर्म का मर्म समझ में नहीं आएगा। तो हम कहते हम जिसको चाहेंगे उसको देखेंगे, उसको जानेंगे, चाहेंगे तो समय सार पढ़ेंगे, चाहेंगे तो गोमर सार पढ़ेंगे। अजयन आचार्य कहते ये सही नहीं है, क्योंकि वे तो गे के अधीन से बौद्ध है और तुम राग के अधीन हो गए। चाह माने क्या है, चाह अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, तो चाह के अधीन हो गई ना बात, तो चाह के अधीन भी नहीं होना चाहिए। तो केवल ज्ञानी को तो यह समस्या नहीं है, क्योंकि सारा लोका लोग इस समय में जानने में आता है, जिनके पास थोड़ा ज्ञान है उनके पास ये समस्या है कि क्या जाने और क्या नहीं जाने। सब लोग पूछते हैं कि क्या करें क्या ना करें, क्या जाने, ऐसा करें ऐसा बैठ के ऐसा सोचें ऐसा सोचें ऐसा सोचें, पागल हो गए हैं लोग, क्या करें। सुनो अभी ये आज इसका सारा समाधान है इसका, जो मैं आपको बोल रहा हूं इसमें, कि किसको आप जाने ये आपकी इच्छा के अधीन नहीं है, क्योंकि इच्छा के अधीन हो तो आपको आजादी नहीं मिली, इच्छा की गुलामी मिली। इच्छा भी तो अपनी शत्रु ही है ना, जो अपने तकलीफें देती है, अपना विकार है ना। तो गे की गुलामी हो या इच्छा की गुलामी हो, तो भगवान की जो मर्जी होगी उसको जानना पड़ेगा तुम्हें, तो भगवान की गुलामी हो गई। क्यों, तो प्योर हमारे हाथ में होना चाहिए ना। हाँ तुम्हारे हाथ में है, अब बोलो तुम क्या करोगे, क्योंकि तुम्हारी इच्छा नहीं, इच्छा के अनुसार तो होगा नहीं। तो देखो खेमचंद भाई के मुख से आपने एक बात सुना होगा ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान के अनुसार ज्ञेय जाना जाता है। सुना कभी? नैमिषारण जी सामने सुना होगा, हैं? नो बोलते ना, बालचंद जी ने भी सुना हो सकता है, हैं? क्या फिर कहता हूं, ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान के अनुसार ज्ञेय जाना जाता है, इच्छा के अनुसार भी नहीं जाना जाता है। तो ज्ञान के अनुसार ज्ञेय जाना जाता का अर्थ क्या? तो ज्ञान की प्रति समय की पर्याय में ये योग्यता है, नक्की है अनादिकाल से, कि ज्ञान के किस समय की कौन पर्याय किसको ज्ञेय बनाएगी, ये क्रमबद्ध पर्याय, ये करना ये नहीं करना, इसमें क्या दम है? तुम जानने में भी आजाद नहीं हो, उपयोग को पर से हटा के निज पर ले जाए, कैसी पागलपन की बातें कर, ले ही नहीं जा सकते। कहाँ अचल जी, क्या ज्ञान की प्रत्येक समय की पर्याय में किस गे को कब जाने, ऐसी योग्यता अनादि से नक्की है। जैसे किस समय जो कौन पर्याय होगी ये नक्की है, तो उस पर्याय का कौन पदार्थ ज्ञेय बनेगा ये भी नक्की है। इतनी आपके अब हम अब पलटा पलटी का क्या रह गया? अब आपको जब तक ज्ञान को पलटा पलटी का विकल्प है तब तक आप नॉर्मल नहीं है, और जो नॉर्मल नहीं होते उन्हें सम्मत नहीं होता। तो ज्ञान को ढीला छोड़ दें, छुट्टा सांड जैसा, ये सब बातें मैंने क्रमबद्ध पदा की किताब में लिखी है, और वो किताब आज से 30 वर्ष पहले लिखी गई थी, हैं? बहुत ज्यादा होंगे, 1,00,000 छपी है, गांव गांव में पहुंची है, और मैंने हजारों व्याख्यान किए हैं उस पर। जो गुरुदेव नैरोबी गए थे ना, तो सबसे पहले मैं उसको उद्घाटन करके गया, और वो लेके गया जब नैरोबी जाने के पहले सब गई थी वो किताब, इसमें आत्म धर्म में तो उसके पहले ही छप गई थी। क्या लिखा उसमें सुनना, कि हर ज्ञान की पर्याय का कौन सा पदार्थ जानने में आएगा ये किसी ने नक्की नहीं किया है, अनादिकाल से नक्की है। देखो एक आसनीय भगवान महावीर बता सकते थे या नहीं बता सकते थे? इस वक्त आज इतने बजे से इतने बजे तक रमेश जी आपका आप मेरा व्याख्यान सुनेंगे, और ये बात मैं आपसे कहूंगा, ये बात आप सुनेंगे, ये भगवान महावीर बता सकते थे कि नहीं, उनने ये बात ज्ञान में थी करी थी, मैं आपसे पूछता हूं। वे जानते थे या नहीं जानते थे? और जानते थे तो नहीं, अब तुम्हारे हाथ में है क्या कि हम ये नहीं जानेंगे, ये जानेंगे। जब तक सर्वकर्तृत्व तेरे के हाथ में, मुझे कुछ नहीं करना है, ये जब तक बहुत मजबूती से नहीं आएगा, तब तक दृष्टि पर पदार्थ से हटकर स्वाभाविक स्वभाव के सन्मुख नहीं जाएगी, सम्मत दर्शन नहीं होगा। बोलो ये उपाय है सम्मत दर्शन का। अब आप उस करने रूप उपाय पूछते, हम क्या बताए? ये ज्ञान को पकड़ के वहां से लाके यहां ले जाए, ऐसा करें ऐसा करें, तो ये पता है ऐसा कर सकता है तुम? तो वो सूत्र बोलता हूं, क्षयोपम लक्षण योग तयैव प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति, ये सूत्र है। केवल क्षयोपम है लक्षण जिसका ऐसी योग्यता ही प्रतिनियतमर्थम, ज्ञान की किस पर्याय का ये कौन बनेगा, उसको बोलते प्रतिनियत अर्थ। ये व्यवस्थापयति, वो योग्यता व्यवस्थापित करती है, वो अनाधिकार से उसमें योग्यता है कि जिस समय ज्ञान की पर्याय इसको ये जानेगी, इसे बोलते पर्यायगत योग्यता। ये सूत्र में लिखा है, और दम में संगड़ गया सबसे पहले 1958 क्या हुआ, आज गम 58 सन में, तो हमारा नाम नहीं भाई जी इस बात में झगड़ा हुआ, कैसे गुरुदेव की अदालत में गया, क्या सुमन भाई रहेंगे चले गए। मैंने पहले भी सुनाया है, मैंने उन्हें सभा में ही सुनाया है, अकेले में नहीं। क्या हुआ कि वो राम जी खेमचंद भाई हमें पढ़ाते थे, तो उसमें ये सूत्र उसमें था कि योग्यता ही ये नियामक है कि ज्ञान किस पर आगे जाने, वो पढ़ाते थे उज्जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला में। तो मैंने कहा कि भाई जी ये सूत्र कुछ अधूरा सा लगता है आप जो बोल रहे हो, उसमें क्या बोलते थे, आज भी वही लिखा होगा, देखो देखना, योग तयैव प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति, ऐसा इतना लिखा है उसने कि योग्यता ही ये नक्की करती है कि किस देव को कौन जाने। ये सोनगढ़ में क्षमता भाई पढ़ाते थे, तो ये मेरे घर की बात नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई जी ये सूत्र तो अधूरा लगता है, कि क्यों, मैंने कहा मुझे पूरा याद है। तो मैंने बताया कि पूरा तो ऐसा है, क्षयोक्तम लक्षण योग्यता ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति, और आप आधा बोल रहे हो, कारखान करना जनवाणी में अच्छी बात नहीं है। मैंने कही तो देखो भैया ये बात राम जी भाई से पूछो, मैं तो जो लिखा है वो पढ़ना है। चलिए दादा गया था ना संस्थापन में, तो राम जी भाई के पास थोड़ी एक बात, दूसरी क्लास राम जी भाई लेते थे, एक टाइम खेमचंद भाई एक टाइम राम जी भाई, और वो पढ़ा रहे थे मुख्य माता का वो प्रसाद से मुख्य प्राप्ति संभव वाला, तो हम उसमें बैठे थे। तो वह बात आई भाई खेमचंद कृष्ण वहां खड़ा हुआ, तो उन्होंने कहा राम जी भाई ने, आप बाजार से आल लाते हो, लौकी, लौकी समझ, आल गुजरात में आल बोलते हैं, अपन लौकी बोलते हैं, समझ गए ना, घिया जो भी बोलते हैं, वो लाते हो ना बाजार से, तो वैसी सब्जी बना लेते हो, तो उसको छीलते हो, बीज निकाल देते हो, ऊपर छिलका निकाल देते हो, और फिर बनाकर उसकी सब्जी बनाते बराबर छील के बनाते हैं, तो ऐसी हमने की। मैंने कहा अच्छा आपने आचार्यों के सूत्रों को और काट छाट कर दी है, आप ये मान रहे हैं कि आपने इसमें काट छाट की है, तो मेरे बच्चे झगड़ा हो गया, पूरी क्लास में 200 आदमी थे उस वक्त शिविर में, और वो क्लास में झगड़ा हुआ, तो बात गुरुदेव तक पहुंच गई कि साहब आज जैसा ऐसा हुआ है, छोटा पंडित आया है नया नया सा, दूल्हा पतला सा है, 20-22 वर्ष का है, और शंकर भाई से बढ़ गया, राम जी भाई से बढ़ गया। तो गुरुदेव ने मेरे से सत्ता के टाइम पर पूछा कि क्या बात है, क्या आपकी क्या शिकायत है, तो मैंने वो बताया कि ये सूत्र जो है ये तो ऐसा है क्षयोक्तम लक्षण योग्यता ही प्रतिनिधि व्यवस्था देती, और ये तो अकेला योग्यता ही बोल रहे, तो क्षयोक्तम लक्षण योग्यता का लक्षण क्षयोक्तम है, ये तो इन्हें काट दिया, तो आप क्या चाहते हो। मैं कहा मैं ये चाहता हूं कि ये सूत्र पूरा छपे, और आप समझा मुझे फिर तो विषय में तो कोई मतभेद नहीं है कि नहीं नहीं खत्म, सही जैसे सही जैसे सही जैसे, तो मेरे ख्याल से आज तक नहीं हुआ आप समझ गए ना। तो उस सूत्र में मतलब सोनगढ़ में भी बहुत बहुत चर्चित विषय था, कि कोई मैंने मेरी नई खोज नहीं है, और हमने तो 8 वर्ष की साल 9-10 उम्र में पढ़ लिया था, तुम लोग तो 16-17 वर्ष की उम्र में आज हमारे पास पढ़ते हो, और हमने वो 8 वर्ष की उम्र में पढ़ा था परीक्षा मुक्त सूत्र 9 वर्ष की उम्र में। क्या योग्यतम अर्थम, कौन से गे को कौन सी ज्ञान की पर्याय जानेगी, ये बात किसी कर्म के उदय से नक्की नहीं है, हमने भी हमारी रुचि से नक्की नहीं हुई है, ये अनादि से नक्की है, और आपको ये विश्वास आ जाए तो आप छोड़ दो ज्ञान को, छुट्टा छोड़ दे, सांड जैसा साज उसको जाने, अरे हम तो किसी माँ बहन की तरफ हमारी निगाह नहीं जाए, इधर को जाए, हमको ये कोशिश नहीं करनी चाहिए, यानी हम ज्ञान को ऐसे छोड़ देंगे कि ताज उसको जाने तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। अरे भैया अनर्थ नहीं होगा, जिन जिन ने छोड़ा उनका ज्ञान आत्मा में गया, ख्याल में आए ना, और उन्हें सम्मत दर्शन से ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तुम इधर छोड़ो तो उसे ढीला, तुम तो उसे गुलाम बना रखा है। कविदेव इस प्रश्न में क्या लिखा था, देखो ज्ञान के सफर का प्रकाशक है, अब सफर का प्रकाशक तो है, किस समय कौन गे बनेगा उसका, क्योंकि तो पूरा तो केवल ज्ञान जैसा तो खुला नहीं है, तो क्षेत्र ज्ञान में तो उसकी पर्यायगत योग्यता में वो गे नक्की है। अब गे आकार और ज्ञानाकार क्या है ये भी समझ लो आप, जैसे अभी बताया ना आंख में जिसको आप देखते हैं उसका फोटो आपकी आंख में आ जाता है, अपन उस फोटो को देखते हैं वास्तव में, हम तुम्हें नहीं देखते, वो फोटो बिल्कुल तुम जैसा ही है, पर हम इसलिए हमें यह भ्रम हो गया कि हमने तुमको देखा, जबकि हमने तो अपनी आंख की उसको देखा और आंख में वो फोटो आ गया, जैसे कि बहुत बड़ा कांच लगा हो है और आप सब ऐसे बैठे हैं इसके पीछे एक, क्यों? तो आप उस कांच में देखें तो आप अपने पीछे वाले को देख लेंगे कि नहीं देख लेंगे? तो आपने पीछे वाले को देखा कि कांच में वाले कांच में जो उसका प्रतिबिंब है उसे देखा? तो हमें भी कह सकते कि पीछे वाले को नहीं देखा, प्रतिबिंब में देखा, और प्रतिबिंब में देखना ही बिंब को देखना है ऐसा अभेद करें तो आपको देखा भी कह सकते हैं। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? मोहम्मद खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, क्यों? तो उसने पद्मिनी की बहुत प्रशंसा सुनी थी कि बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, और बहुत खूबसूरत जो संपत्ति हो बढ़िया से बढ़िया वो तो राजा की होती है, सम्राट तो मैं हूं, इसलिए वो कैसे चित्तौड़ के राजा के यहाँ है, वो मेरे घर में होना चाहिए, मेरे रनवास में होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पद्मिनी को भेज दो यहाँ। उन्होंने कहा नहीं, राजपूत की आन बान शान का सवाल है, क्यों? हम किसी कीमत पर नहीं भेजेंगे। उसने आक्रमण कर दिया और वो आकर के चित्तौड़ के किले को घेर दिया। ये तो घटना आप जानते हैं सब। छह महीने तक घेरे रहा, अंदर वालों का भी रसद खत्म हो गई तो वे भी घबराने लगे, और बाहर ये भी थक गया, तो फिर समझौता वार्ता शुरू हुई। तो उसने कहा कि एक दफे तुम मुझे पद्मिनी को दिखा दो, उसमें जी भर के देख लू और फिर मैं वापस चला जाऊंगा। दिल्ली में जाके क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं तो कह दूंगा देखो मुझे पसंद नहीं आई, छोड़ा, इज्जत तो बच जाएगी, समझ में आया, दिखा दो। तो पद्मिनी से कहा कि झगड़ा निपटता है, मैं किसी पर पुरुष के सामने वो मुझे देखे इससे नहीं, वैसे तो मैं हाथी पर बैठ के बाजार में निकलती हूँ, सारी जनता देखती है ना मुझे, क्या अपराध है, लेकिन स्पेशल कोई लड़का लड़की को देखने जाता है तो जब वो जाती है वो देखना अलग है ना, और वैसे लड़के चाचे लड़के देखते हैं कॉलेज में, क्या फर्क पड़ता है कि मैं उसे दिखाने के लिए मैं नहीं जाऊंगी अपने को सज के। अब क्या करें, वो नहीं माने वो भी नहीं माने, तो बीच में पंडितों ने एक रास्ता निकाला, क्यों? उनने क्या निकाला कि एक बड़ा दर्पण यहां लगाओ, बीच में बड़ा पर्दा लगाओ, उधर पद्मिनी बैठेगी तो इधर मोहम्मद खिलजी बैठेगा, तो पद्मिनी का प्रतिबिंब दर्पण दिखेगा काय में दर्पण में, और उसे वो देख लेगा। तो इस तरह से देख वो कह मैं दिल्ली में जाके कह सकूंगा कि मैंने देख लिया, और पद्मिनी को कहा तू समझे तेरे को क्या देखा, तो दर्पण देखा उसने क्या, तो ये समझौता हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे उस चक्कर में नहीं पड़ना है, मैं तो मेरा काम हो गया। मैं ये कहता हूँ अलाउद्दीन खिलजी ने वो कह रहा पद्मिनी को देखा के नहीं देखा, आप बताओ इसको हम नहीं देखा भी कह सकते हैं और देखा भी कह सकते हैं, और दोनों की अपेक्षा जल्दी दीदी है, इतनी सी बात है। तो तुम्हारे ज्ञायाकार ज्ञानाकार से इससे क्या लेना देना क्या है कि हर ज्ञेय का आकार ज्ञान की पर्याय में बनता है, और ज्ञान उसे देखता है, वो दर्पण में देखता है हर चीज को, तो हम उसे नहीं देखा भी कह सकते हैं और देखा भी कह सकते हैं। तो जहां नहीं जानता है पर को आत्मा तो ये समझ लेना कि वो अपेक्षा है, और जानता है तो समझ लेना ये अपेक्षा है। अब भाई समझ, अब इतनी बात तो हो गई कि ज्ञान की पर्याय में जो भी ज्ञेय सामने आता है उसका एक आकार बनता है। शास्त्र में क्या लिखा है कि घड़े तीन प्रकार के होते हैं, कुछ कमी, घड़े तीन प्रकार के होते हैं, एक दो मिट्टी का घड़ा सामने आप देखते हैं वो ही होता है, और एक उसे जो देखता है उसकी आंख में एक घड़ा बनता है, जो देखता है उस ज्ञान में एक घड़ा बनता है, उसे बोलते हैं घट ज्ञान, वो अर्थ घट और एक ज्ञान घट, दो घट हो गए, और तीसरा एक घड़ा और होता है, कैसा घा और ता, ऐसा मिला के घट, एक घट शब्द भी है, आप यहाँ घट लिख दूं मैं इससे, बोले क्या है, क्या बोलोगे, घट, समझ रहे ना, तो इसे बोलते शब्द का घड़ा, ज्ञान घट, शब्द घट और अर्थ घट, तीन घट होते हैं। अब वो ज्ञान घट और शब्द घट अर्थ घट के अनुसार हो तो सत्य है और उससे उल्टा हो तो असत्य है। जैसा हो वैसा दिखना चाहिए ना। लेकिन कभी कभी आपने ऐसे दर्पण देखे होंगे कि आदमी है तो दुबला पतला दिखता मोटा ताजा है, थिन गया और दिखता है लंबा, तो अपन उनको असली दर्पण तो नहीं कह सकते ना, उससे निर्णय तो नहीं कह सकते कि हम ऐसे हैं। और दुबला पतला आदमी ये समझ के देख के दर्पण में कि मैं मोटा हूं क्यों, और मोटा तो भी दवाई खाने लग जाए, ऐसे तो नहीं हो सकता, तो वो सही ज्ञान नहीं है। ऐसा ज्ञान में भी होता है, वस्तु जैसी है वैसी ना देख के जरा मोटी दुबली पतली मोटी जैसी, मतलब अलग टाइप की दिखती है, तो वो तो ज्ञान का दोष है। अभी जो ज्ञान में वस्तु दिखती है समझे ना, तो वो जो आकार ज्ञान में बना वो ये जैसा बना, जैसे दर्पण में मोर का उदाहरण आता है ना, लालचंद भाई बहुत देते थे, तो मोर जो है वो दर्पण में जो दिखाई दे रहा है वो मोर बिल्कुल मोर जैसा ही है ना। किस मोर जैसा, कि जो मोर सामने है ना, तो वो मोर जो है वो दर्पण का है तो मोर का है, समझ में आया कि नहीं है, बोलो। तो मोर उस जैसा आकार है इसलिए उसका है, अपन बोलते हैं मेरे जैसा आकार है इसलिए वो इसमें जो वो चित्र है वो मेरा है, समझे ना, और उसमें कच्चा मटेरियल दर्पण का लगा है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं गया है, मेरा चित्र बनाया आपने, तो वो चित्र जो है रंग का है कागज का है कि पंडित हुकुमचंद का है, बोलो। कच्चा मटेरियल जिसका है तो अपन वो कहेंगे ये कौन सा रंग का है, ऐसा कुछ नाम नाम देते ना अलग अलग क्यों, और मेरे जैसा है इसलिए कहेंगे मेरा है, मेरा नहीं है वो बिल्कुल, वो मुझसे ही कहता है देखो मैंने आपको भैया फोटो बनाया है 1,00,000 रुपए में मिलेगा खरीदना है, कि मेरा मेरा फोटो मुझको बेचता है कि कौन खरीदेगा तुम्हारा फोटो तुम्हें खरीदा कहते हो तो मेरा है तो मुझसे तो पैसा क्यों मांगता है, कि ये तो तुम्हारे जैसा है, समझ में आया ना, तो वो जो मोर है वो दर्पण का है। ऐसे ज्ञान में जो गे झलका उसमें कच्चा मटेरियल ज्ञान का लगा है इसलिए उसे उस अपेक्षा बोलते हैं ज्ञानाकार। तो वो ही चीज गेयाकार है और वो ही चीज ज्ञानाकार है, एक ही चीज के दो नाम है, समझे ना। हम समझते ज्ञानाकार अलग होता होगा गेयाकार अलग होता होगा, ये बात प्राय पूजनों में लिखी है, बताओ गायक गेयाकार ममात निवार के सो परमात्म सिद्ध भय, पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, सिद्ध पूजन में है ना, आया ना, क्या है इसका अर्थ भैया, कौन जाने, ये पूजा करने वाले तो गारंटी से नहीं जान सकते, बड़े बड़े पंडित नहीं जानते, पर उन्होंने सुधार दिया, गलती लगी उन्हें, ये क्या है गेयाकार क्या होता है, तो उन्होंने कह दिया गायक के आकार मम तनवार के, गेयाकार का के आकार कर दिया। अच्छा बताओ इसका क्या अर्थ है सर, तुम बताओ, कुछ पता नहीं। ये कहते हैं कि गायक आत्मा का मैं जो गेयों के आकार झलके तो वो आत्मा गेयाकार हो गया, ऐसा कहते हैं, लेकिन वास्तव में गेयाकार हुआ ही नहीं, वो तो उस वक्त भी ज्ञानाकार ही रहा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो कहते हैं ज्ञायक में जो गे जैसे आकार झलके, गे नहीं झलके, गे जैसे आकार, उनमें से ममत्व छोड़ो, हम क्या गलती करते हैं कि जो गे हमारे ज्ञान में झलकता है उसमें एकत्व स्थापित कर लेते हैं, ममत्व स्थापित कर लेते हैं, तो ये कह रहे हो ज्ञायक गेयाकार ममत्व निवार के ऐसे तुम परमात्मा बने, परमात्मा बनने की विधि है वो, तेरे ज्ञान में क्यों गधे गधा दिखेगा तो तुम अपने को गधा मान लेगा क्यों? तेरे ज्ञान में अग्नि दिखेगी तो तू जल जाएगा, समझ में है ना? कोई ज्ञान का कोई नो इफेक्ट है ना? तो दर्पण में कितनी अग्नि झलका, दर्पण गर्म होता है, लेकिन ये अज्ञानी जगत जो जो गए उसके ज्ञान में झलकते हैं उन उनमें अपना मान लेता है। एक इसमें कलश है समय सार में, ज्योत्सना रूपम ऐसा है नहीं? और उसका एक हिंदी में एक कवि ने बहुत अच्छा बना है, भूमि न होते चांदनी की ज्यों त्यों नहीं धनी गे को ज्ञानी। पढ़ी होगी अपनी से क्या नहीं? और गगन दहन दहत पर गगन न दत्ते गते, गगन दहन ताकी विधियानी, यानी जीव विचारते ऐसे। ज्ञानी जी ऐसा विचार करते हैं, कैसा विचार करते हैं ज्ञानी जी? कि भूमि न हो तो चांदनी की ज्यों, कि चंद्रमा की चांदनी जिस जमीन पर पड़ गई तो वो जमीन चंद्रमा के बाप की हो जाती है। तो तेरे ज्ञान ने जिस गेह को जान लिया वो तेरा हो गया। भूमि न हो तो चांदनी की ज्यों त्यों नहीं धनी गे को ज्ञानी, गेयों को जानने वाला ज्ञानी वो ज्ञानी तो हो सकता है लेकिन धनी नहीं हो सकता। क्यों ना धनी गे को ज्ञानी, गेयों को जानने वाला ज्ञानी मैंने समझ नहीं जानता है इसलिए इसका नाम ज्ञानी। ख्याल रहेंगे ना? तो गेयों को जानने वाला व्यक्ति गेयों का ज्ञानी माने ज्ञाता तो है लेकिन उसका मालिक नहीं है। कैसे नहीं है? जैसे चांदनी की जमीन नहीं होती है। इस समय सार में कलश है, उसका अनुवाद है समझो। भूमि न हो तो चांदनी की ज्यों त्यों नहीं धनी गे को ज्ञानी। अगली पंक्ति इससे भी कठिन है, दहन दहत पर गगन न तद गते, गगन दहन ताकी विधिहानी। क्या कह रहे हैं? समझ कि दहन दहत माने अग्नि जलती है, तदगत गगन न दहत लेकिन वहीं पर आकाश है वो नहीं जलता। अग्नि जलती है और ईंधन आ जाए कोई कागज डालो तो वो भी जल जाता है, तो उसे जो जो भी वो जलाती है हर चीज को जलाने की उसकी ताकत है तो वहां आकाश भी है उसे जला दे रहे। तो अग्नि आकाश को क्यों नहीं जलाती है? कि गगन दहन ताकी विधियानी, क्योंकि आकाश में नहीं जलने का स्वभाव है, जलने का स्वभाव नहीं है। तो इसका मतलब जिसमें जलने का स्वभाव है अग्नि उसे जलाती है। तो उसे क्या जलाती है? तो जलने का स्वभाव है उसका, तो अपने स्वभाव से जलता है। तो अग्नि ने क्या जलाया? अग्नि तो निमित्त मात्र है। अग्नि जलाती होती तो सबको जला दे। दहन दहत पर गगन न तद गत, गगन दहन ताकी विधिहानी। वस्तु स्वरूप विचारत ऐसे, निरंतर ज्ञानी ज्ञानी जीव ऐसा विचार करते हैं कि जे ज्ञान में झलकते हैं लेकिन वो ज्ञान ज्ञेयों का मालिक नहीं हो जाता। लेकिन हम तो उसके बहुत अभ्यासी हैं। ये आजकल चलता ना, क्या बोलते उसको, जब भी आपने कोई रिसर्च करी, जैसे मान लो कि आप चीज बनाई आपने तो उसे वो ट्रेडमार्क करा लेते हैं गवर्नमेंट से, क्या बोलते हैं? हाँ, पेटेंट करा लेते हैं। ये पेटेंट क्या है? ये ज्ञान पर इसका अधिकार हो गया। मैं पूछता हूं कि जो उसने रिसर्च की वो वस्तु में पहले थी कि उसने बनाई डाली है उसने? जैसे कि यहां पर नीम की पत्ती है और जो भी है उनको मिलाकर के एक दवाई बनाई, तो वो दवाई का जो गुण था वो उन जो पदार्थ थे लगे जगत में उनमें वो है कि नहीं है? उसने क्या किया? उसने सिर्फ उसे जाना है,
क्यों? केवल यदि तकलीफ है तो नीम के पत्ते को घोंट पे लगा दो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी खुजली। क्यों? अब आपको पता था, हमें पता नहीं है। क्यों? तो आप हमको ऐसे ही बता दें नीम की पत्ती घोंटे तो हम दो पैसा दिलवाएंगे तुम्हें। कहना नहीं, आप यहाँ आइए, मैं लेप लगाऊंगा और आपने को घूट घाट के रख ली नीम की पत्ती थोड़ा वो तेल मेल डाल डूल के और लगा दी और लाओ 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया बिकने लगता है। और वो अपना पेटेंट करा लेते हैं, हमने ये बनाई। क्यों भैया? ये तुम्हारा क्या अधिकार है उससे? वो तो उस वस्तु का है गुण। एंड तुमने अनुभव, अमेरिका ने अनुभव बना लिया तो हमें नहीं बताया वो, लेकिन हम अभी अपने आप द्वारा फिर अनुभव बना लें तो वो उसका बाप कैसे रोक सकता है हमें? तो तूने समझ लिया कि नीम की पत्ती से ये फायदा होता है, तू हमें मत बता। लेकिन वो नीम से हम प्रयोग करके निकाल लें तो तू रोकने वाला कौन होता है? अब तो ऐसा पेटेंट होता है कि हमारे घर में नीम लगा है और हम उसकी निबोड़ी नहीं खा सकते हैं, हम नीम की पत्ती नहीं खा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने पेटेंट करा लिया है। अब वो मुफ्त में हमारे यहां से ले जाएगा किलो के भाव, क्यों, और ग्राम के भाव बेचेगा हमको वापस। तो ज्ञान तो किसी का अधिकार हो सकता है, होना चाहिए है? तो ये का ज्ञानी धनी नहीं हो सकता, लेकिन जानने, अब देखो ज्ञान का स्वभाव जानना है शोर पर दोनों को, और ज्ञेयों का स्वभाव जानने में आना है, क्योंकि प्रमेत्र नाम का धर्म है ना, उसमें इसी के नाम से उनका नाम ज्ञेय पड़ा है। तो ये दोनों के स्वभाव हैं। तो इसमें लिखा है समय सार में कि ये स्वरूप संपदा शब्द का प्रयोग है, जानना ज्ञान का स्वरूप है और जानना ज्ञान की संपत्ति है, विपत्ति नहीं। समझ में आ गया? तो हमने पर को जाना तो हमें विपत्ति आ गई, कर्म बन जाएंगे। पर के जानने मात्र से कर्म बनते हैं, कौन से शास्त्र में लिखा है जाओ बताओ मुझे कि जानना बंध का कारण है? वो नहीं सर, किसी तीन लोग तीन काल में पर को स्व को किसी को भी, उसके साथ जो राग द्वेष होगा बंध तो उससे होता है, और तुम ज्ञान पे ठोक देते हो ज्ञान का बंध है। तो ज्ञान का स्वरूप संपदा क्या है? जानना सौ पर को, और ज्ञेयों की स्वरूप संपदा क्या है? देखो कि पदा जो भी ज्ञान है उसको बिना मीन में किए स्वयं को जानने दे। क्या तुम मुझे कैसे जान सकता है? नहीं, प्राय जैसी है तेरे में गेत धर्म है ना, तो कुछ प्राइवेसी नहीं है। तो सारी दुनिया तेरे को जाने, ये तेरा स्वभाव है, इससे तेरे को कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। लेकिन हमको तो लगता है कि हमारी गुप्त बात सम्मय दृष्टि को अगुप्ती का भय नहीं होता, है ना? क्यों? सारी दुनिया जाने, हमें क्या तकलीफ है? 5 मिनट में खत्म करता हूं, मैं जानता हूं मुझे भागना है, लेकिन बहुत मर्म की बात है, इसलिए नहीं छोड़ नहीं सकता मैं। क्यों सरदर भाई बता दूं? कि जानना उसका स्वभाव है, किसका? आत्मा का। और जानने में आना एक ज्ञेय का स्वभाव है। लेकिन जैसे हमको अभी समझो अनंत सुखी बनना है, तो आत्म प्रसिद्धि आती है ना, आत्म प्रसिद्धि, आत्म ख्याति, तो अपनी ख्याति अपनी प्रसिद्धि हो, इसके लिए हम क्या प्रयत्न करते हैं? अखबारों में विज्ञापन देते हैं, अपना फोटो छपाते हैं, कि अभिनंदन पत्र मिल गया हो तो वो छपाते हैं, यदि आपने हमारे गले में माला डाल दी हो, हार डाल दिया हो ना, तो हम दूसरे दिन अखबार में समाचार भेजना, समाचार भेजना भैया, जरा वो फोटो भेजना ना जो आपने मेरे को माला डाली थी साथ में, कौन देखेगा? यानी लोग हमें जाने, इसको हम आत्मख्याति कहते हैं, हमारी प्रसिद्धि। क्यों? लोग हमें जाने, हम लोगों को जाने, ये तो हो गया अधर्म, क्योंकि आत्मा पर को जानता नहीं। क्यों? और लोग हमें जाने, ये हो गया धर्म, लोगों के लिए हम पर नहीं है।
अरे कहते हैं लोग तुम्हें जाने ये नहीं है। अच्छा कितने लोग जाने तो तुम्हारा काम चल जाएगा बोलो। 1500 चले। अरे 1500 से क्या होता, 1500 तो वैसे ही जानते हैं। क्यों तो पूरा कलकत्ता जाने 1 करोड़ लोग हैं ना, फिर तो चलेगा ना। कलकत्ता के मेयर बन जाओ तो जान लेगा पूरा कलकत्ता। हाँ ये बात तो सच्ची है, लेकिन 1 करोड़ से क्या होता है। क्यों तो कितने लोग जाने बोलो। 1 अरब लोग जाने काम चल जाएगा तो भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाओ, 1 अरब लोग जान लेंगे। बात तो ठीक है, लेकिन अमेरिका का बन जाओ तो 6.5 अरब लोग जान लेंगे। क्यों अंत है तेरी इच्छाओं का। यदि तेरे को 6 अरब से ज्यादा लोगों को जाने तेरे को ये भाव है ना, तो तू समझ ले आज सुखी हो जा। हम इंतजाम अभी कर देते। सिद्ध कितने हैं? चला गया हमारा संजीव, कहाँ है? सिद्ध कितने हैं? अनंत। और वे तुझे जानते होंगे कि नहीं? अनंत जानते हैं। अब तो तेरी तृप्ति हो जानी चाहिए ना। जो ये कहते ही उसके चेहरे पे से हवाइयां उड़ने लगती है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता है कि सिद्ध जाने, क्योंकि वे तो कच्चा किच्चा जान लेंगे। हम तो ये चाहते हैं हम मूर्ख तो दुनिया हमें विद्वान समझे, हमें कंजूस तो दुनिया हमें दानवीर समझे। क्यों हम तो एक हम हैं बेईमान तो दुनिया हमें ईमानदार समझे। हम तो ये चाहते हैं, तो ऐसी समझ तो मूर्खों में ही हो सकती है। इसलिए हम चाहते हैं मूर्ख लोग हमें जाने, विद्वान नहीं, भगवान नहीं। लेकिन आज चिंता की बात मत करो, वो भगवान जानेंगे और मूर्ख नहीं जानेंगे, सिर के हो जाना। क्यों लेकिन घबराओ मत, खतरा नहीं है। वो जानेंगे लेकिन किसी से कहेंगे नहीं। हमको तो डर वही बदनामी का है ना। अरे भाई जगत तुम्हें जाने, इसका नाम सुपर प्रकाशक है। तुम आत्मख्याति नहीं है, तुम जगत को जानो, इसका नाम भी आत्मख्याति नहीं है। कि तुम्हारी ज्ञान पर्याय तुम्हें जाने, इसका नाम आत्मख्याति है। ख्याल नहीं ना। और आत्मा का ये स्वभाव है कि वो अपने को जाने नहीं। यदि आप भाग्य से भव्य हैं तो एक वो पर्याय नक्की है जो वो कोई भी केवल नहीं बता सकता है कि किस समय किस काल में तुम्हारी ज्ञान पर्याय तुम्हें जानेगी। उस दिन तुम्हें सम्मा दर्शन हो जाएगा, और जिस दिन लगातार अंत मुहूर्त तक जानेगी तो केवल ज्ञान हो जाएगा। इसलिए कोई ज्ञाकार ज्ञानाकार का झगड़ा नहीं है। नो टेंशन। सारे टेंशनों के अभाव का नाम है सम्मा दर्शन का पुरुषार्थ।